लाउडेटर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हमने क्रिस्तुस विवित अर्थात येसु ख्रिस्त जीवित हैं, युवाओं के संबंध में संपन्न हुई धर्म सभा, युवाओं के संबंध में संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं और पूरी कलिसिया के नाम प्रेरितिक उद्बोधन पर एक चर्चा शुरू की है। हमने अपने पिछले प्रसारण में येसु के युवा काल की चर्चा की थी। हम आज कलिसिया में युवाओं के बारे में जिक्र करेंगे। युवा अपने में युवा अवस्था के समय से बढ़कर है, यह एक मानसिक स्थिति है। यही कारण है कि कलिसिया एक संस्थान के रूप में अपने को युवाओं की ओर अभिमुख करती और अपने इतिहास के विभिन्न परिस्थितियों में नवीनता का एहसास करती है। वास्तव में अपने इतिहास के अति नाटकीय क्षणों में वह अपने पूरे हृदय से अपने जीवन के प्रथम प्रेम के क्षणों की ओर लौटने की आवश्यकता का एहसास करती है। इस सच्चाई के आधार पर वेटिकन द्वितीय महासभा इस बात पर जोर देती है, कलिसिया अपने समृद्धि जीवंत इतिहास और समय के साथ मानवीय जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर है। यह इतिहास और जीवन से संबंधित लक्ष्य दुनिया हेतु सही अर्थ में एक युवा है। कलिसिया में हम येसु ख्रिस्त को सदा युवाओं के लिए एक मित्र और सहचर्य के रूप में पाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे कलिसिया को उन लोगों से मुक्त करें जो उसे वृद्ध बना देते हैं, अतीत को लेकर जो इसे अपने में जड़ित बना देते या विकास करने से रोके रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे इसे अन्य दूसरी परीक्षाओं से बचाए रखे, विशेषकर उन मनोभावों से जहां हमारे लिए यह विचार आते हैं कि कलिसिया अपने में युवा है, क्योंकि वह दुनिया के द्वारा दी जाने वाली सारी बातों को अपने में स्वीकार करती है। वे बातें जहां हम यह सोचते हैं कि वह अपने में नई है, क्योंकि वह अपने विचारों को दरकिनार करती और दूसरों के जैसा ही व्यवहार करती है, लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं है। कलिसिया अपने में स्वयं युवा है जब वह ईश्वर के वचनों द्वारा अपने में नई शक्ति को ग्रहण करती पवित्र यूखरिस्त, जहां हम रोज दिन येसु की उपस्थिति को पाते हैं, और पवित्र आत्मा की शक्ति जो हमारे जीवन में निवास करते हैं। कलिसिया अपने में युवा है क्योंकि वह अपनी इस योग्यता को प्रदर्शित करती है कि वह अपने उद्गम स्थल की ओर सदैव लौट सकती है। कलिसिया के सदस्यों के रूप में निश्चित ही हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। हम दूसरे लोगों को मित्रों और पड़ोसियों के रूप में देखें, उन प्रेरितों के रूप में जिन्होंने सभी लोगों की ख्याति का रसास्वादन किया। यद्यपि इसके बावजूद हम अपने में एक दूसरे से भिन्न रहने का साहस करते हैं और अपने को दुनिया के मनोभावों से अलग रखते हुए उदारता की सुंदरता का साक्ष्य देते सेवा, शुद्धता, धैर्य, क्षमा और अपनी व्यक्तिगत बुलाहट के प्रति निष्ठा, प्रार्थना, न्याय की खोज, सबों की भलाई, गरीबों के प्रति प्रेम और सामाजिक मित्रता के भाव बनाए रखते हैं। ख्रिस्त की कलिसिया सदैव अपने में परीक्षा का शिकार हो सकती है, जहां उसे अपने जोश को खोने का भय रहता है, क्योंकि वह ईश्वर की पुकार को नहीं सुनती और अपने विश्वास के आधार पर जोखिम लेने से अपने को दूर करती है। वह अपने में झूठी दुनियावी सुरक्षा की बातों की ओर आसक्त हो सकती है। युवा कलीसिया को सदा युवा बने रहने में मदद कर सकते हैं। वे उसे भ्रष्ट होने से रोकते हैं। वे उसे सदा आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। घमंडी और सांप्रदायिक होने से रोक सकते हैं। वे उसे दरिद्र होने में और उचित साक्ष्य देने में मदद कर सकते हैं, जहां वह गरीबों और समाज से बहिष्कृत लोगों के साथ खड़ा होती, न्याय के लिए कार्य करती और अपने में चुनौती स्वीकार करती है। युवा अपने में कलीसिया को एक सुंदर स्वरूप प्रदान करते हैं, जहां वह नई शुरुआत में आनंदित होती है, खुद को अनारक्षित रूप से देती, अपने को नवीन बनाती और बड़े कार्यों के लिए अपने को समर्पित करती है। प्रेरित प्रबोधन क्रिस्तुस विवित कहता है कि हम में से वे जो अपने में युवा नहीं हैं, हमें उन बातों की खोज करने की जरूरत है जिससे हम अपने को युवाओं के निकट रख सकें और उनके जीवन का अंग बन सकें। एक साथ रहना कलीसिया के लिए उस परिस्थिति का निर्माण करना है जहां हम अपने में वार्ता करते और भ्रातृत्व का साक्ष्य देते हैं जो हम में जीवन का संचार करता है। हमें युवाओं के लिए और अधिक मौका देने की जरूरत है जिससे वे अपनी बातों को खुले रूप में रख सकें। सुनना हमें संवेदनशीलता में उपहारों के आदान प्रदान हेतु मदद करता है। वहीं यह हमारे लिए सुसमाचार के प्रचार हेतु एक अवसर प्रदान करता है जो सच्चे रूप में हमारे हृदयों का स्पर्श करता, हमारे लिए निर्णायक और फलहित होता है। यद्यपि बहुत से युवा गण हैं जो ईश्वर, धर्म और कलीसिया को मात्र शब्द के रूप में देखते हैं, यीशु ख्रिस्त की छवि को जब हम उनके मध्य पेश करते तो वे अपने को उनकी ओर प्रभावकारी ढंग से आकर्षित होता हुआ पाते हैं। अतः कलीसिया को चाहिए कि वह अपने में उलझी ना रहे, वरन यीशु को अपने जीवन के द्वारा व्यक्त करे। इसका अर्थ हमारे लिए यही है कि उसे नम्रता में उन चीजों को स्वीकारने की जरूरत है, कुछ बातें जिन्हें उसे अपने में परिवर्तन लाने की जरूरत है। और यदि ऐसा होता है तो कलीसिया को चाहिए कि वह युवाओं के उन बातों और दृष्टिकोणों की प्रशंसा करे। धर्म सभा युवाओं के उन मतों को विभिन्न कारणों के कारण स्वीकार करती है जहां वे कलीसिया से उन चीजों की मांग नहीं करते जिसे वे अपने जीवन में महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। बहुत से युवा अपने में इस बात की मांग करते हैं कि वे अपने में स्वतंत्र छोड़ दिए जाएं, क्योंकि वे कलीसिया की उपस्थिति को अपने में अर्थपूर्ण नहीं पाते, यहाँ तक कि वह उनके लिए किरकिरी सा लगती है। उनके ये निवेदन अपने में अतर्क संगत या अवेगी अवमानना नहीं है। हम इसमें कुछ गंभीर और समझदारीपूर्ण कारणों को पाते हैं, जैसे कि नैतिक पतन और वित्तीय घोटाले, युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता, प्रवचन में तैयारी का अभाव और उसके निम्न प्रस्तुति, ख्रिस्तीय समुदाय में युवाओं के लिए निष्क्रिय जिम्मेदारी, समकालीन परिवेश में कलीसिया द्वारा अपने धर्म सिद्धांतों का नैतिकता के आधार पर व्याख्या प्रस्तुत करने में कठिनाई। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं की धर्म सभा के उपरांत जारी प्रेरितिक उद्बोधन क्रिस्तुस विविध पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
सब है क्रिस्त के शरीर, कलीसिया के वो है शीश,
अति स्वामी एक जीवन जीना हमें है, प्रभु का जीवन प्रेम भरोसा विश्वास का जीवन, कलीसिया से प्रेम करो पवित्र आत्मा का वो वरदान, कलीसिया से प्रेम करो पवित्र आत्मा का वो वरदान। ओ हमारी माता है क्रिस्त का है वो शरीर, कलीसिया से प्रेम करो।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन स्थित प्रेरितिक आवास संत मार्था के प्रार्थनालय में क्रिस्त त्याग अर्पित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों को निमंत्रण दिया कि वे मुक्ति की कृपा को ना भूलें, जो हृदय को ईमानदार और करुणा के योग्य बनाता है। प्रवचन में संत पापा फ्रांसिस ने संत मार्कुस रचित सुसमाचार से लिए गए पाठ पर चिंतन किया, जहां यीशु अपने शिष्यों को समझाते हैं जो रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी, वे आपस में बहस कर रहे थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त रोटी नहीं थी। यीशु इस बात को जानकर उन्हें चेतावनी देते हैं, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए वे ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते तुम नहीं देखते और कान रहते नहीं सुनते हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैंने 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? संत पापा ने कहा, हम सभी में कुछ न कुछ कारण है जो हमारे हृदय को कठोर बनाता है। उन्होंने प्रार्थना करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि प्रभु ही हमें धर्मी और उदार हृदय प्रदान करते हैं। प्रभु कठोर और विचारधारा के हृदय में प्रवेश नहीं करते, वे केवल उस हृदय में प्रवेश करते हैं जो उनके समान दयालु और खुले हैं। संत पापा ने प्रार्थना की कि प्रभु हमें उदार और खुला हृदय प्राप्त करने की कृपा दे। कोस्टा रिका की कलीसिया के शतवर्षीय जयंती वर्ष 16 फरवरी 2020 से 16 फरवरी 2021 के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने एक पत्र प्रेषित कर उन्हें शुभकामनाएं अर्पित की एवं उन्हें सुसमाचार का अथक प्रचार करने का प्रोत्साहन दिया। संत पापा फ्रांसिस की ओर से प्रेषित पत्र में वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने वहां के सभी याचकों, धर्म सामाजियों और लोक धर्मियों का अभिवादन किया, जिन्होंने पिछले रविवार 16 फरवरी को कोस्टा रिका की कलीसिया की स्थापना की शतवर्षीय जयंती के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। संदेश में उन्होंने कहा, प्रभु को उनकी कृपाओं के लिए धन्यवाद देने के इस समारोह में, जिसको हमने 100 सालों में उस देश के उनके पुत्र पुत्रियों को सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देने के मिशन में प्राप्त किया, मैं आध्यात्मिक रूप से भाग लेता हूँ। उन्होंने लिखा कि संत पापा प्रोत्साहन देते हैं कि वे प्रभु येसु ख्रिस्त के करुणावान प्रेम की याद करें, जो सभी अच्छाइयों, सच्चाइयों और सुंदरता के स्रोत हैं। उन्होंने लिखा, सभी पुरोहित, धर्म सामाजिक एवं लोक धर्मी सुसमाचार का प्रचार अथक रूप से करते रहें, सभी के साथ सुसमाचार का आनंद बांटें, विशेषकर जो जरूरतमंद हैं। उन्होंने कैथोलिकों से आग्रह किया है कि वे समाज के विभिन्न आयामों में सच्चा ख्रिस्त साक्ष्य प्रस्तुत करें। पत्र में संत पापा ने कोस्टा रिका की कलीसिया पर दूतों की महारानी की सुरक्षा की कामना की है तथा उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया है। आयरलैंड की कलीसिया में यौन दुराचार के शिकार एवं उससे बचे हुए लोगों के लिए 28 फरवरी को तीसरा प्रार्थना दिवस मनाया जाएगा। प्रार्थना दिवस 2017 में आयरलैंड के कार्तिक धर्मदर्शी सम्मेलन द्वारा जारी किया गया था। इस दिन महागिरजाघर एवं देश के अन्य सभी पल्लियों के गिरजाघरों में प्रायश्चित की मोमबत्ती जलाई जाएगी, जिस पर धर्मदर्शियों की आशीष होगी तथा पश्चाताप की धर्म विधि के साथ एक विशेष प्रार्थना की जाएगी। संत पापा फ्रांसिस ने 2018 में विश्व परिवार दिवस के समापन मिसा के दौरान इस अपराध के लिए प्रभु से दया और क्षमा की याचना की थी। आयरलैंड के महाधर्मदर्श इया मोन मार्टिन ने बतलाया कि मोमबत्ती जलाकर हम अपने भाई बहनों की याद करेंगे जिनके भरोसे के साथ कलीसिया एवं उसके दुराचारियों के द्वारा बुरी तरह विश्वासघात किया गया था और जिनके विश्वास की परीक्षा क्रूरता से ली गई थी। महाधर्मदर्श ने पीड़ितों के लिए प्रार्थना के महत्व एवं प्राशित मोमबत्ती के प्रतीकात्मक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पश्चाताप अंधकार में प्रकाश एवं आशा का चिन्ह है। उन्होंने कहा कि यह स्मरण दिलाता है कि हम सभी को प्रायश्चित करना है, कलीसिया के रूप में दुराचार के शिकार लोगों की पीड़ा के लिए क्षमा मांगना है। अतः आयरलैंड के सभी धर्म प्रांतों और पल्लियों को इस पहल में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया है। महाधर्मदर्श मार्टिन की उम्मीद है कि इस मोमबत्ती को जलाना भविष्य में विश्वासियों के लिए प्रतिदिन का एक धर्म विधि बन जाएगा जो गिरजाघर में प्रवेश कर यौन दुराचार के शिकार लोगों के लिए विशेष प्रार्थना चढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रार्थना और पीड़ित लोगों की मदद शारीरिक और आध्यात्मिक दया का एक आधुनिक काम है। मुंबई के महाधर्मदर्श कार्डिनल ओस्वाल्ड ग्रेसिस को भारतीय कातिक धर्मदर्श सम्मेलन का अध्यक्ष पुनः दूसरी बार चुना गया है। सीपीसीआई के अध्यक्ष का चुनाव 17 फरवरी को सम्मेलन के अंतिम दिन किया गया जिसमें तीनों रीति के धर्मदर्शों ने भाग लिया। सम्मेलन की शुरुआत 13 फरवरी को बैंगलोर में हुई थी। 75 वर्षीय कार्डिनल ग्रेसिस ने सेवानिवृत्त होने के कानूनी उम्र पूरा होने पर नवंबर माह में अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया था जिन्हें संत पापा फ्रांसिस ने दिसंबर माह में मुंबई के महाधर्मदर्श के रूप में पुनः नियुक्त किया। कार्डिनल ग्रेसिस संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा 24 नवंबर 2007 को कार्डिनल बनाए गए थे। 13 अप्रैल 2013 को वे संत पापा फ्रांसिस द्वारा कार्डिनल परिषद के सदस्य नियुक्त हुए। भारतीय कातिक धर्मदर्श सम्मेलन की अध्यक्षता कई बार करने के साथ साथ वे 31 दिसंबर 2018 तक एशिया धर्मदर्शों के संघ के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय कातिक धर्मदर्श सम्मेलन जो भारत की लातिनी रीति के धर्मदर्शों को एक मंच पर लाता है, इसकी वार्षिक आम सभा बैंगलोर में 16 फरवरी को सम्पन्न हुई। भारत और नेपाल के लिए वैटिकन के प्रेरित राजदूत महाधर्मदर्श जाम बप्तिस्ता दी क्वात्रो ने रविवार को सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए क्रिस्त्याग में धर्मदर्शों का आह्वान करते हुए कहा, क्रिस्त का अनुसरण करने वालों की जिम्मेदारी है सुसमाचारी मूल्यों, करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहन देना। हमारे देश के धर्मदर्शों को चाहिए कि वे विश्वासियों को अपने जीवन में सुसमाचार के मूल्यों को गहराई से जीने का प्रोत्साहन दें। सीसीपीआई के अध्यक्ष गोवा एवं दमन के महाधर्मदर्श फिलिप नेरी फेराव ने सभा की अध्यक्षता की और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।